सोचते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे एडवांस्ड एक स्काईस्क्रेपर बनाई जा रही हो।
हाँ, जिसमें उस जमाने की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी पूरी तरह से झोंक दी गई हो।
बिल्कुल, एक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट जिसका मकसद हो कि सारी इंसानियत बस एक ही जगह सिमट कर रह सके और कोशिश ये हो कि आसमान तक अपनी पहुंच बना ले।
लेकिन देखिए, मजाक की बात यह है कि इतिहास उस इमारत को इंसान की सबसे बड़ी अचीवमेंट नहीं मानता।
हाँ, बल्कि ये हमारे सबसे बड़े क्या कहते हैं, भ्रम, अलगाव और घमंड का प्रतीक बनकर रह गया।
सही कहा आपने। वैसे अक्सर जब हम ऐसी पुरानी वंशावलियों या किसी प्राचीन खंडहर के बारे में पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये तो बस इतिहास की कोई नीरस सी जानकारी होगी।
हाँ, मतलब हम हर पुरानी चीज को एक पुराने इतिहास के खांचे में डालकर आगे बढ़ जाना चाहते हैं, पर आज के इस गहन अध्ययन में ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है।
बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्या हो अगर वो पुरानी नामों की लिस्ट जो बोरिंग लगती है वो असल में दुनिया का सबसे पहला पुराजनीतिक यानी जियोपॉलिटिकल नक्शा हो।
और यही चीज हमारी सोच को पूरी तरह चुनौती देती है। आज हम स्रोतों के एक ऐसे ही ढेर का विश्लेषण कर रहे हैं
और इसके लिए हमने जेनेसिस यानी उत्पत्ति की पुस्तक के अध्याय 10 की पहली आयत से लेकर 11 की 26वीं आयत तक के हिस्से को चुना है,
जिसके लिए हम डॉक्टर केनेथ मैथ्यूज के एक बहुत ही बेहतरीन व्याख्यान को अपना आधार बना रहे हैं।
हाँ, जिसमें उन्होंने द नेशंस एंड द टावर ऑफ बाबिल यानी राष्ट्रों की उत्पत्ति और बाबिल की मीनार की घटना का बहुत ही गहराई से विश्लेषण किया है।
तो इस चर्चा का हमारा मेन मिशन ये समझना है कि कैसे एक पुरानी वंशावली और एक अधूरी मीनार की कहानी हमारे इंसानी स्वभाव के बारे में इतना कुछ बताती है,
हमारी तकनीकी महत्वाकांक्षाओं और संचार के बारे में भी, जो आज के इस AI और इंटरनेट वाले जमाने में भी उतनी ही लागू होती है।
सही बात है। और देखिए, इस सामग्री में काफी अलग अलग और जटिल दृष्टिकोण हैं, तो हम बिना किसी पक्षपात के उन मूल स्रोतों को यहाँ आपके सामने रखेंगे।
बिल्कुल,
तो चलिए इस साहित्यिक और ऐतिहासिक सफर को शुरू करते हैं। मीनार बनने की इस कहानी से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा।
हाँ, जल प्रलय के बाद वाली दुनिया।
वही दुनिया कि आखिर वो दुनिया दिखती कैसी थी और उस जमाने के पढ़ने वालों के लिए हीरो या विलन कौन थे।
अगर हम अध्याय 9 की बैकग्राउंड को देखें ना, तो वहाँ जल प्रलय के ठीक बाद नूह एक तरह से नए आदम के रूप में उभरता है,
यानी एक नई शुरुआत।
हाँ, पहले आदम की तरह नूह भी मिट्टी से जुड़ा हुआ था, पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प घटना घटती है। नूह अंगूरों का एक बगीचा लगाता है।
एक मिनट, यहाँ मुझे एक चीज थोड़ी अजीब लग रही है।
क्या
मतलब, बाइबल जैसे इतने बड़े महाकाव्य में जहाँ इतनी बड़ी जल प्रलय आई हो, वहाँ तुरंत बाद एक अंगूर का बगीचा लगाने की बात पर इतना फोकस क्यों है?
अच्छा सवाल है।
मतलब क्या ये जो विटिकल्चर या अंगूर की खेती है, ये सिर्फ इंसान की क्रिएटिविटी दिखाने के लिए है या इसके पीछे कोई और गहरा मतलब छिपा है?
असल में इसके पीछे काफी गहरा अर्थ है। अगर हम प्राचीन मिडिल ईस्ट के बाकी मिथकों को देखें ना, जैसे बेबीलोनियन कहानियां, तो उनमें शराब और अंगूर के बगीचों को देवताओं का डायरेक्ट गिफ्ट माना जाता था।
अच्छा, जैसे आसमान से कोई उभार टपका हो।
हाँ, बिल्कुल वैसा ही। पर उत्पत्ति की किताब इसे बहुत ही साफ शब्दों में एक इंसानी आविष्कार बताती है।
मतलब ये भगवान का काम नहीं, इंसान की खुद की मेहनत थी।
सही कहा, ये इंसान की खेती की तकनीक और उसकी मेहनत का परिणाम था। हालांकि जमीन से मिलने वाला हर फल भगवान की ही देन है, पर उस बगीचे का निर्माण पूरी तरह से इंसान का अपना प्रोजेक्ट था।
यानी अब इंसान सिर्फ जिंदा रहने के स्ट्रगल से बाहर निकलकर एक तरह से सभ्यता का निर्माण कर रहा था।
बिल्कुल, और यहीं से इस कहानी में एक अजीब सा मोड़ आता है जो हमारी सबसे पुरानी इंसानी कमजोरियों को सामने लाता है।
वही सभ्यता बनाने वाला इंसान अपनी ही बनाई शराब पीकर नशे में धुत हो जाता है ना?
हाँ, वही। और जब नूह अपने तंबू में बिना कपड़ों के बेहोश पड़ा होता है, तब उसका बेटा हाम, जो आगे चलकर कनान का पिता बनता है, वो अपने पिता का मजाक उड़ाता है।
वो बाहर जाकर बाकियों को भी बताता है ना इस बारे में।
हाँ, जो कि उस जमाने की संस्कृति में बहुत बड़ा अपमान था। पिता का सम्मान उस वक्त सबसे ऊपर होता था।
तो हाम का ये काम एक बहुत ही गहरा अनादर था।
सही बात है। पर दूसरी तरफ नूह के जो बाकी दो बेटे थे, शेम और यपेत, वो पूरा सम्मान दिखाते हैं।
मैंने पढ़ा है कि वो पीछे की तरफ चलते हुए जाते हैं और अपने पिता को ढक देते हैं ताकि उन्हें उस हालत में देखना ना पड़े।
बिल्कुल वैसे ही करते हैं, और इस एक घटना के नतीजे आगे चलकर बहुत गंभीर होते हैं।
हाँ, हैम के वंशजों को यानी कनान को एक बहुत भारी श्राप मिलता है,
और शेम और यपित को आशीर्वाद। डॉक्टर मैथ्यूज कहते हैं कि यही घटना उस वक्त के हिब्रू पढ़ने वालों के लिए एक बहुत ही जरूरी नैतिक मंच या मॉरल मैप तैयार करती है।
मॉरल मैप, इसको थोड़ा और समझाएंगे।
देखिए, उस वक्त के इजरायली पाठकों के बारे में सोचिए, वो सदियों बाद उसी कनान देश में घुसने वाले थे।
अच्छा, तो ये कहानी उन्हें उनकी बैकग्राउंड समझा रही थी।
ये कहानी उन्हें बताती है कि कनानियों के साथ उनके ऐतिहासिक रिश्ते कैसे बने और उन्हें कनान के लोगों को हमेशा थोड़ा शक की नजर से क्यों देखना था।
मैं अगर इसको समझाने के लिए एक उपमा दूं, तो क्या ये एक तरह से किसी प्रीक्वल मूवी की तरह काम कर रही है?
प्रीक्वल मूवी कैसे?
जैसे देखिए, कोई मेन मूवी शुरू होने से पहले उसका एक प्रीक्वल आता है ना,
जी,
जो हमें बता देता है कि कौन सा कैरेक्टर आगे चलकर क्या करने वाला है या उनकी पुरानी दुश्मनी आखिर कहां से शुरू हुई।
अरे वाह, ये उपमा तो एकदम सटीक है। ये प्रीक्वल आगे आने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स का पूरा बेस बता देती है,
कौन सा ग्रुप आगे विलन बनेगा और कौन हीरो।
हाँ, पर यहाँ डॉक्टर मैथ्यूज एक बात पर बहुत जोर देते हैं कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि हम के सारे वंशज पैदाइशी बुरे थे या भगवान ने उन्हें हमेशा के लिए छोड़ दिया था।
अच्छा, तो ये कोई एब्सोल्यूट रूल नहीं था।
धारा किस तरफ मुड़ने वाली है, और यही नैतिक मंच हमें सीधे अध्याय 10 पर ले जाता है।
वही 70 राष्ट्रों वाली मशहूर लिस्ट, जिसे टेबल ऑफ नेशंस कहा जाता है।
हाँ, वही।
वैसे सच कहूँ तो ऐसी वंशावलियां पढ़ने में काफी बोरिंग और नीरस सी लगती हैं।
हाँ।
लेकिन जब मैंने इस पर ध्यान दिया तो इसका स्ट्रक्चर बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड लगा।
इसको थोड़ा डीपली समझने के लिए हमें एंशिएंट वंशावलियों के टाइप्स को देखना होगा। जेनेसिस में दो मुख्य तरह की वंशावलियां होती हैं।
अच्छा, कौन कौन सी?
पहली होती है खंडित या ब्रांचिंग वंशावली, जैसा कि अध्याय 10 में है। ये बिल्कुल एक पेड़ की शाखाओं की तरफ फैलती है,
जैसे शेम, हाम और यपित के सारे बच्चों का जिक्र, फिर उनके बच्चों का, फिर उनके बच्चों का, एक बड़ा सा जाल।
बिल्कुल, किसी विशाल बरगद के पेड़ जैसा, और एक पिता के आगे सारे परिवारों को डिटेल में दिखाया जाता है।
और दूसरी तरह की कौन सी होती है?
दूसरी होती है रेखिक, यानी लीनियर। ये अध्याय 5 और 11 में मिलती है। इसमें एक सीधी लाइन चलती है एक इंसान से ठीक दूसरे इंसान तक।
मतलब फोकस इधर उधर नहीं जाता?
नहीं, जैसे अध्याय 11 में ये सीधी लाइन शेम से शुरू होती है और पूरा फोकस करते हुए सीधे अब्राहम तक जाती है।
इसका मतलब ये है कि ये लिस्ट इतिहास में से एक स्पेशल फैमिली को चुन रही है ताकि उस उद्धारकर्ता वाले वादे को आगे ले जाया जा सके जो सबसे शुरू में आदम को दिया गया था।
एकदम सही पकड़ा आपने।
पर यहाँ एक और बात है जो मुझे सच में काफी कंफ्यूज करती है।
बताइए, क्या कंफ्यूजन है?
अध्याय 10 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ दुनिया भर में फैले 70 अलग अलग राष्ट्र हैं और सबकी अपनी अपनी अलग भाषाएं हैं।
हाँ, बिल्कुल।
पर जब हम पेज पलटकर अध्याय 11 पर जाते हैं, बाबिल की मीनार की कहानी में, तो वहाँ अचानक सब लोग एक ही भाषा बोल रहे हैं।
हाँ, शुरुआत में ऐसा ही दिखाया गया है।
और फिर हमें कहानी के एंड में पता चलता है कि उनकी भाषाएं अलग हुई क्यों? ये तो उल्टा हो गया ना, मतलब किसी टाइम ट्रेवल वाली फिल्म जैसा लग रहा है ये, टाइम का उलट फेर।
लिटरेचर की दुनिया में ना इस तकनीक को डिस्क्रोनाइजेशन कहा जाता है, और ये कोई लिखने वाले की गलती नहीं है।
अच्छा, तो ये जानबूझकर किया गया था?
हाँ, ये एक बहुत ही सोची समझी साहित्यिक तकनीक थी। प्राचीन लेखकों के लिए टाइम हमेशा कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होता था।
मतलब उनके लिए टाइम एक टूल की तरह था?
बिल्कुल। अध्याय 10 में लेखक पहले आपको इफेक्ट या नतीजा दिखाता है कि देखो, दुनिया में 70 अलग राष्ट्र हैं और सब अलग भाषा बोल रहे हैं।
और ये पढ़कर नेचुरली रीडर के दिमाग में सवाल आएगा कि अरे, ये हुआ कैसे?
हाँ, और फिर लेखक अध्याय 11 में आपको एक फ्लैशबैक में ले जाता है और उसका कॉज या कारण दिखाता है
कि इंसान के घमंड और बाबिल में उनकी बगावत की वजह से ही भगवान को आकर उन्हें बिखेरना पड़ा।
सही बात है।
वैसे देखा जाए तो कहानी बताने का ये तरीका बहुत ही मॉडर्न लगता है। और एक बात और, ये जो 70 राष्ट्रों की लिस्ट है, ये थोड़ा सिंबॉलिक लगती है मुझे।
हाँ, आप सही सोच रहे हैं। प्राचीन बाइबल साहित्य में नंबर 7 और उसके मल्टीपल्स का बहुत गहरा मतलब होता है। ये एक तरह से पूर्णता या कम्प्लीटनेस को दर्शाता है।
यानी ये 70 राष्ट्र असल में पूरी ह्यूमन रेस का रिप्रेजेंटेशन थे?
बिल्कुल। और हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ बंटवारा सिर्फ बायोलॉजी या किसी डीएनए टेस्ट के बेसिस पर नहीं है।
हाँ, यही बात। इस पर मुझे आपसे एक तगड़ी आपत्ति जतानी है।
अच्छा, बताइए क्या आपत्ति है आपकी?
अगर हम मान लें कि ये वाकई एक फैमिली ट्री या वंशावली है, तो इसमें मिश्र यानी मिस्राइम को एक इंसान कैसे बताया गया है? वो तो एक पूरा ग्रुप था ना।
हाँ, वो एक राष्ट्र था।
और उससे भी अजीब बात देखिए, लिखा है कि केनान एक सीदोन नाम के शहर का पिता था। हा? अब कोई शहर जो ईंट पत्थर से बना हो वो किसी इंसान का बेटा कैसे हो सकता है?
ये कन्फ्यूजन होना बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि हम इसे ना एक मॉडर्न लेंस से देख रहे हैं।
तो उस एंशिएंट लेंस से ये कैसा दिखता था?
प्राचीन जमाने में वंशावली का मतलब सिर्फ खून के रिश्ते बताना नहीं होता था। ये एक तरह का रिकॉर्ड होता था कि अलग अलग कल्चर्स, पॉलिटिकल ग्रुप्स और जियोग्राफिकल एरियाज एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं।
तो क्या मैं इसको किसी आदमी के पर्सनल डीएनए रिपोर्ट के बजाय एक मॉडर्न कॉर्पोरेट ऑग चार्ट की तरह देख सकता हूँ?
वाह, बहुत अच्छा आइडिया।
मतलब जैसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का चार्ट होता है, वहां हम देखते हैं कि मार्केटिंग टीम सेल्स टीम के साथ कैसे जुड़ी है और कौन सा ब्रांच ऑफिस किस कंट्री में है, भले ही वहां काम करने वालों में कोई खून का रिश्ता ना हो।
हाँ बिल्कुल, यही कॉन्सेप्ट है। ये असल में एंशिएंट दुनिया का एक जियोपॉलिटिकल ऑर्ग चार्ट ही था, जो ये बताता था कि पावर, भाषा और ज्योग्राफी आपस में कैसे गुद्धे हुए थे।
इंटरेस्टिंग।
और अगर आप इस ऑर्ग चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो इस 70 देशों की लिस्ट में एक बहुत ही बढ़िया डिटेल मिस है।
क्या?
इस पूरी लिस्ट में इसराइल का नाम ही नहीं है।
वेट, क्या? जो लोग ये किताब लिख रहे हैं और जो इसे पढ़ रहे हैं उनका अपना नाम ही इस नक्शे से गायब है?
हाँ, क्योंकि ये पहले से ही मान लिया गया था कि इसको पढ़ने वाले इजरायली ही हैं।
अच्छा, तो ये चार्ट उनको दिखाने के लिए था कि देखो दुनिया के बाकी सारे डिपार्टमेंट्स कहाँ कहाँ हैं।
बिल्कुल, कि इस बड़ी सी कंपनी में उनकी क्या जगह है। और देखिए, इसी कॉर्पोरेट चार्ट में से एक ऐसा सीईओ निकल कर आता है, जैसा मैंने शुरू में कहा, जिसने पूरी इंसानियत की दिशा ही पलट दी।
आप निम्रोद की बात कर रही हैं ना?
हाँ
जिसके इस बड़े और एम्बिशियस प्रोजेक्ट बैबल की मीनार की हम बात कर रहे थे।
हाँ निम्रोद, जो हाम का वंशज था, जिसको लिस्ट में एक पराक्रमी शिकारी या माइटी हंटर बताया गया है।
अब देखिए, आज के जमाने में माइटी हंटर सुनने पर लगता है जैसे वो कोई सुपर हीरो होगा जो लोगों को खतरनाक जानवरों से बचाता होगा।
हाँ, मॉडर्न दिमाग को वैसा ही लगता है, पर प्राचीन हिब्रू पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई तारीफ नहीं थी उसकी।
तो वो कोई हीरो नहीं था?
बिल्कुल नहीं, बल्कि उसको एक भयंकर पावर हंग्री तानाशाह या डिक्टेटर की तरह देखा जाता था। वो जानवरों का नहीं बल्कि इंसानों का शिकारी था।
बाप रे।
उसने बेबीलोन और निनवे जैसे बड़े बड़े शहर बनाए थे, और इतिहास उठाकर देख लीजिए, ये शहर हमेशा से इसराइल के सबसे बड़े दुश्मन रहे हैं।
यानी इसी निम्रोद की उस बड़ी साम्राज्यवादी भूख ने ही बाबिल की मीनार जैसे प्रोजेक्ट्स की नींव रखी थी।
सही कहा आपने।
और जब बाबिल की मीनार बनने का डिटेल आता है तो वहां इस बात को बहुत हाईलाइट किया गया है कि उनके पास कितनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी थी।
हाँ, उन्होंने आम पत्थर और मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया।
उन्होंने पत्थर की जगह पक्की ईंटों और गारे की जगह तारकोल यानी बिटुमिन का यूज किया था,
जो कि उस वक्त के हिसाब से बहुत ही बड़ी तकनीकी क्रांति थी। धूप में सुखाई गई ईंटें उतना वजन नहीं सह सकती थीं।
हाँ, वो जल्दी टूट जाती होंगी।
पर भट्टी में पकाई गई ईंटें और तारकोल से वो ऐसी इमारतें बना सकते थे जो मौसम की मार झेल सके और काफी ऊंचाई तक जा सके।
और उन्होंने ऐसी ही टेक्नोलॉजी से एक ज़िग्गुरात बनाया, यानी एक विशाल सीढ़ीदार मीनार जो बिल्कुल किसी नकली पहाड़ जैसी लग रही हो।
बिल्कुल। और उनका मकसद क्या था? अध्याय 11 कहता है, अपना नाम कमाना और पूरी धरती पर बिखरना ना पड़े, इसलिए एक जगह टिके रहना।
यानी वो टेक्निक के नशे में इतने चूर थे कि उन्हें लगा वो भगवान के लेवल तक पहुंच जाएंगे।
वही तो उनका सबसे बड़ा घमंड था।
पर इस कहानी का जो लिटररी सार्कैज्म या व्यंग्य है वो बड़ा ही मजेदार है। डॉक्टर मैथ्यूज ने इसके चायस्टिक स्ट्रक्चर के बारे में क्या बताया था?
हाँ, ये चायस्टिक स्ट्रक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको ऐसे समझिए कि ये अंग्रेजी के लेटर एक्स के शेप जैसा होता है।
एक्स के शेप जैसा।
हाँ, कहानी का पहला आधा हिस्सा ना ऊपर की तरफ जाता है। इंसान प्लानिंग करते हैं, पक्की ईंटें बनाते हैं, बड़ा शहर बसाते हैं और फिर एक मीनार बनाते हैं जो स्वर्ग को छू ले।
मतलब सब कुछ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है।
बिल्कुल। और फिर कहानी के एकदम सेंटर में एक टर्निंग पॉइंट आता है। उसके बाद कहानी का बाकी आधा हिस्सा ठीक उल्टे सीक्वेंस में नीचे की तरफ आता है।
जैसे भगवान उनकी भाषा में गड़बड़ी करते हैं, शहर का बनना रुक जाता है और फिर इंसान पूरी धरती पर बिखर जाते हैं।
सही पकड़ा।
और इस एक्स स्ट्रक्चर के एकदम बीच में जो टर्निंग पॉइंट है, सच कहूं तो वो व्यंग कमाल का है।
हाँ, वो आयत 5 वाली बात।
हाँ, मतलब इंसान अपनी सारी एडवांस टेक लगाकर ऐसी मीनार बना रहा है कि बस आज तो स्वर्ग को छू लेंगे, पर आयत में लिखा है कि भगवान को उसे देखने के लिए नीचे आना पड़ता है।
हाँ,
ये तो वैसी बात हुई ना कि इंसान दुनिया की सबसे ऊंची स्काईस्क्रेपर बनाकर खड़ा हो जाए और भगवान स्वर्ग से कहें, अरे रुको, मुझे ठीक से दिख नहीं रहा, जरा कोई मेरा मैग्नीफाइंग ग्लास लाना।
बिल्कुल यही, ये ह्यूमन ईगो पर बहुत ही तीखा कटाक्ष है,
है ना?
इंसान चाहे कितनी भी ऊंची तकनीकी छलांग लगा ले, भगवान के आगे वो बहुत ही छोटा और मामूली है। और इसी व्यंग्य के साथ यहाँ शब्दों का एक बड़ा गहरा खेल भी है।
कैसा खेल?
देखिए, अकैडियन भाषा में बैबिल यानी बेबिलोन का मतलब होता है देवताओं का द्वार या गेट ऑफ द गॉड्स।
अच्छा, तो उन्हें लग रहा था कि वो भगवान के दरवाजे तक पहुंच रहे हैं।
हाँ, लेकिन जो हिब्रू लोग इस किताब को पढ़ रहे थे उनके लिए उस शब्द का साउंड एकदम अलग था।
हाँ, मैंने पढ़ा था कि हिब्रू में ये बालल जैसा साउंड करता है,
और बालल का मतलब होता है भ्रम या गड़बड़ी यानी कंफ्यूजन।
यानी एक मस्त आयरनी हो गई कि जो इंसान सोच रहा था कि वो देवताओं का द्वार बना रहा है, एंशियंट हिब्रू पाठक उस पर हंस रहे होंगे कि भाई ये तो सिर्फ उनके घमंड और गड़बड़ी का एक छोटा सा स्मारक बनकर रह गया।
एकदम सही, वो लोग अपना नाम चमकाने के लिए सब कर रहे थे, पर उनके घमंड का नतीजा ये हुआ कि उनकी भाषा उलझ गई और जिसका डर था वही हुआ, वो सारी दुनिया में तितर बितर हो गए।
पर इस बिखराव के बारे में ना लोग अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं।
क्या?
ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ये जो भाषाओं का अलग होना और बिखरना था, ये सिर्फ भगवान की तरफ से एक भयानक सजा थी।
हाँ, लोग वैसा ही सोचते हैं,
पर ये पहलू बहुत जरूरी है। बाबिल में जो हुआ ना, वो सिर्फ एक सजा नहीं थी, वो एक तरह का रेस्क्यू मिशन या बचाव कार्य भी था।
रेस्क्यू मिशन? किससे बचा रहे थे?
उनके अपने आप से। भगवान की ओरिजिनली यही प्लानिंग थी कि इंसान पूरी धरती पर फैलें। उत्पत्ति के पहले ही अध्याय में ये ऑर्डर दिया गया था ना, फलों फूलों और पूरी धरती में भर जाओ।
हाँ,
और बाबिल के लोग वही तो रिजेक्ट कर रहे थे, वो भगवान के प्लान के स्ट्रिक्टली खिलाफ जा रहे थे। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि भगवान शुरू से ही दुनिया में डाइवर्सिटी या विविधता चाहते थे, पर इंसान उस डाइवर्सिटी को दबाना चाहता था?
बिल्कुल सकीक, बाबिल के लोगों के बीच जो यूनिटी थी वो कोई सच्ची यूनिटी नहीं थी, वो उनके अपने डर और अहंकार की थी।
वो एक जगह चिपके रहना चाहते थे।
हाँ, वो डाइवर्सिटी को पूरी तरह खत्म करके बस एक भाषा और एक ही कंट्रोल के अंडर जीना चाहते थे,
वही जिसे डिक्टेटरशिप कहते हैं। ये तो एक बड़ा सीरियस फिलॉसफी का पॉइंट हो गया। मतलब क्या हम हमेशा यूनिटी यानी एकता और यूनिफॉर्मिटी यानी एक रूपता के बीच में धोखा खा जाते हैं?
कैसे, थोड़ा डिटेल में बताइए।
देखिए, एकता या यूनिटी का मतलब है कि अलग अलग विचार, अलग कल्चर और भाषा के लोग प्यार से एक साथ रहें। पर यूनिफॉर्मिटी यानी एक रूपता का मतलब होता है सब कुछ एक जैसा कर देना, सब एक तरह से सोचें, एक ही भाषा बोलें, कोई अलग ना दिखे,
वही रोबोट बन जाना।
हाँ, तो क्या जबरदस्ती थोपी हुई ये यूनिफॉर्मिटी सच्चे कम्युनिटी की सबसे बड़ी दुश्मन नहीं है?
इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब भी किसी तानाशाह ने लोगों पर जबरदस्ती की यूनिफॉर्मिटी थोपनी चाही है ना, रिजल्ट हमेशा तबाही ही मिला है। बाबिल की उस तकनीकी एकरूपता को तोड़कर भगवान ने असल में ह्यूमैनिटी को एक बहुत बड़े खतरे से बचा लिया।
अच्छा, इसलिए उन्होंने भाषाओं को अलग अलग कर दिया ताकि लोग मजबूर होकर धरती पर फैले?
हाँ, ताकि इंसान अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ अलग अलग संस्कृतियों, कलाओं और राष्ट्रों के रूप में स्वतंत्र होकर आगे बढ़ें। और देखिए, इसमें सबसे प्यारी बात क्या है,
क्या
को भी शामिल किया है,
और इसका आर डायरेक्ट कनेक्शन सदियों बाद न्यू टेस्टमेंट यानी नए नियम में दिखता है ना। मैं पेंटेकोस्ट के दिन की बात कर रहा हूँ जिसका एक्ट्स अध्याय 2 में जिक्र है।
हाँ, वहाँ तो नजारा ही कुछ और था। वो सीन बाबिल के श्राप को पूरी तरह उल्टा कर देता है।
कैसे?
जब जेरूसलम में पवित्र आत्मा या होली स्पिरिट आती है तो वहाँ दुनिया भर के लोग जमा थे, और हैरानी की बात देखिए, वहाँ वही राष्ट्र मौजूद थे जैसे इलामी, मिस्री और मेसोपोटेमिया के लोग।
वही लोग जिनकी लिस्ट अध्याय 10 में 70 राष्ट्रों में दी गई थी।
हाँ, एकदम वही।
और यहाँ जो चमत्कार हुआ ना, वो ये नहीं था कि अचानक सब लोग अपनी मातृभाषा भूलकर कोई एक ही ग्लोबल लैंग्वेज बोलने लगे हों।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
चमत्कार ये था कि लोगों ने एक दूसरे की बातें खुद की यानी अपनी अपनी ही भाषा में सुनी।
उन्होंने उनको किसी नए बैबल में नहीं बंधा,
बल्कि उसी डाइवर्सिटी के बीच में एक पुल बना दिया।
बिल्कुल, भाषाएं और संस्कृतियां वैसी ही अलग रहीं, पर अब वो एक दूसरे को समझ सकते थे, उनके बीच एक सच्ची यूनिटी और प्रेम बन गया था।
तो बैबल में उनके तकनीकी घमंड के कारण जो भाषा एक दीवार बन गई थी, वही भाषा पेंटिकॉस्ट में भगवान की कृपा से एक दूसरे से जोड़ने का जरिया बन गई।
सही बात। ये पूरा किस्सा ना इंसानी समाज, पावर और ईश्वरीय अनुग्रह यानी ग्रेस को समझने का एक मास्टर क्लास है।
अगर इसको समअप करें तो क्या पिक्चर बनती है?
देखिए, ये सिर्फ कहानियां या नाम नहीं है, ये पूरी हिस्ट्री में एक क्लियर लाइन खींचते हैं।
कैसी लाइन?
आदम की आय विफलता से लीजिए, फिर नू के जरिए नई शुरुआत, फिर बैबिल में इंसान के घमंड की पीक, और फाइनली अब्राहम को चुनने तक। ये धागा बताता है कि इंसान बार बार भगवान बनने की कोशिश करता है और भगवान बार बार उसे खुद से बचाते हैं।
और यही लाइन फाइनली ईसा मसीह तक आती है। मुझे याद है डॉक्टर मैथ्यूज ने बाइबल के यूहन्ना यानी जॉन अध्याय 17 का भी जिक्र किया था।
हाँ, उसमें ईसा मसीह की प्रार्थना है। वहाँ उन्होंने शाश्वत जीवन या इटर्नल लाइफ को किसी मैजिकल स्टेटस या किसी बहुत बड़ी इमारत के रूप में डिफाइन नहीं किया।
तो कैसे डिफाइन किया?
बल्कि एक गहरे पर्सनल रिलेशन के रूप में, भगवान के साथ आपसी रिश्ते के रूप में। और यही वो सच्ची यूनिटी है जो बैबल के लोग कभी अपनी पक्की ईंटों और तारकोल से नहीं पा सकते थे।
यानी बैबल में इंसान कोशिश कर रहा था एक ऊंची मीनार बनाकर नीचे से ऊपर स्वर्ग तक पहुंचने की।
हाँ, और ईसाई धर्म शास्त्र ये कहता है कि भगवान खुद ऊपर से नीचे इंसान के रूप में आए ताकि वो इंसान से कनेक्ट कर सकें।
ये इस कहानी की सच में सबसे बड़ी आयरनी और सबसे बड़ी सच्चाई है। ये याद दिलाता है कि हमारी असली सिक्योरिटी ऊंची इमारतों में नहीं, बल्कि उस रिश्ते में है जो हमें रचने वाले से जोड़ता है।
मैं पूरी तरह इससे सहमत हूँ।
इन सब बातों को समेटते हुए ये क्लियर हो जाता है कि उत्पत्ति के ये पुराने अध्याय सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये आज की हमारी दुनिया का एक आईना है जो दिखाते हैं कि पावर और टेक के नशे में हम कहां भटक जाते हैं।
बिल्कुल सही कहा।
और आखिरी में हमारे सभी सुनने वालों के लिए आज का एक आखिरी बड़ा सवाल है। शायद ये इन पुराने किताबों में डायरेक्टली ना लिखा हो, पर इसका मैसेज आज हर तरफ फील होता है।
हाँ, आज के दौर की सच्चाई।
आज के जमाने में जहां हम सब इंटरनेट, AI ट्रांसलेशन, सोशल मीडिया और इस पूरी ग्लोबल कल्चर रूपी पक्की ईंटों से क्या एक नई ग्लोबल बैबल की मीनार तो नहीं बना रहे?
ये तो काफी सोचने वाली बात है।
हाँ, कि क्या हमारी ये एडवांस टेक्नोलॉजी और यूनिटी हमें असल में एक दूसरे के सच में करीब ला रही है, या फिर हम सिर्फ एक नया बालाल यानी एक नया भ्रम, ज्यादा शोर और अकेलापन पैदा कर रहे हैं? अगली बार जब एक पूरी दुनिया से जुड़ने के लिए आपके फोन की चमकती स्क्रीन ऑन हो ना, तो जरूर सोचिएगा, क्या इस ग्लो में हम अपनी असली पहचान खो रहे हैं या वाकई से और अमीर बना रहे हैं?